بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم اور عزیز ناظرین کی خدمت میں آپ کے میزبان پروگرام اسوہ کامل بطور لے کر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے پاک دامن میں پاک ہستیوں کی تربیت کی ہے، لہٰذا ہماری مسلمان خواتین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گھریلو ذمہ داریوں اور مخصوصاً اپنے فرزند کی اولاد کی تربیت کو خاص اہمیت دیں اور خاص اس بات کا خیال رکھیں۔ بے شک فاطمہ وہ ہیں کہ جن کی مادری پر ہمارے آئمہ علیہ السلام کے، جو خود عالم انسانیت کے لیے ایک اسوہ کامل ہیں، وہ بھی فخر کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع اسوہ کامل بطول میں تربیت کے حوالے سے ہی رہے گا، اور ہم اس سلسلے میں اسلامک اسکالر محترمہ تسنیم زہرا رضوی سے ہی گفتگو میں رہیں گے۔ محترمہ تسنیم زہرا رضوی، السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔
وعلیکم السلام، شکریہ۔
جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ آج تربیت کے حوالے سے ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر والدین کی، مخصوصاً جو ماں ہوتی ہے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کی اچھی تربیت ہو اور وہ ایک اچھا انسان تربیت کر کے معاشرے کے حوالے کریں، اور اس طرح سے بہرحال یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ مختلف تعلیمات سے بھی سہارا لیتے ہیں اور ان کی مکمل بہرحال کوشش یہی ہوتی ہے۔ تو ہم یہ اس وقت آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا والدین اپنی خواہش کے بل بوتے پر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین۔ والدین جو بھی ہوں، جس مقام مذہب کے بھی ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اس قاعدے سے مستثنی نہیں ہے کہ اس کی اپنے بچوں کے لیے نیک خواہش نہ ہو۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ جب ان کو اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس سے امامہ، آپ کو میں امام بنا رہا ہوں لوگوں کا، تو ایک بڑا عہدہ تھا یہ کہ جس میں خدا کا خلیفہ کوئی بنتا ہے یا خدا کا کی طرف سے امام بنایا جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ وَمِن ذُرِّیَّتِی، تو یعنی اپنے بچوں کے لیے اس نیک خواہشات کو آپ نے اظہار کیا۔ اس کا ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہے، لیکن خواہش کافی نہیں ہوتی۔ اچھا، کیونکہ تربیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکھارنا، باہر لانا، اجاگر کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اس کو ایک علم مانتے ہیں، یہ ایک فن کا نام ہے، تو اس کو سیکھنا جیسے ہر علم کو سیکھنا ہے۔ تو اگر میں نہیں سیکھوں گی، کوئی ماں اگر وہ مہارتیں اور وہ روش اور وہ طریقہ کار نہیں سیکھیں گے والدین کہ جو بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو خالی خواہش کے بلبوتے پر تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر خواہش ہی پر ہوتا تو آج دنیا میں کوئی بھی اولاد بری نہ ہوتی، کیونکہ کسی کے ماں باپ نے بھی اس کے برے ہونے کی خواہش نہیں رکھی۔ تو ہمیں کرنا ہے خود کوشش، اور خود امیر المومنین علیہ السلام اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو ان کے زمانے کے مطابق۔
اچھا،
ان کے زمانے میں رہ کر، یعنی ماں باپ ظاہر ہے اپنے بچپن کو گزشتہ زمانے سے گزار کے آئے ہیں، اور جو ان کی اولاد ہے وہ آج کے دور کے بچپن اور آج کے زمانے میں بچپن گزار رہی ہے، تو لہٰذا جو تقاضے ہیں ان کے زمانے کے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے جو اسلام نے معین کیے ہیں تربیت کے۔ تو یہ بغیر سیکھے ممکن ہی نہیں ہے۔ افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی خاص انتظام ہی نہیں ہے۔ یعنی یعنی یہ کہہ دینا کہ ماں ایک عظیم شخصیت کا نام ہے، ماں کا احترام کرو، یا ماں کی ذمہ داری یا تربیت، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں اس کے لیے باقاعدہ طور پر کورسز رکھنے چاہیے، اپنی ماؤں کے لیے تعلیم و تربیت کے انتظامات ہونے چاہیے کہ مائیں سوچیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے ہاتھ میں، اور ہم نے اس امانت کو خدا کے سامنے اچھا کر کے پیش کرنا ہے تاکہ سرخرو ہو سکیں۔
اچھا، مہارتیں ماں باپ دونوں کے لیے جاننا ضروری ہے یا صرف ماں کے لیے ہی کافی ہے کہ گھر میں بس ایک کے لیے کافی ہے تربیت کا یہ حصہ؟
عموماً ایسا دیکھنے میں آتا ہے ویسے کہ اگر کوئی اور ہنر ہوتا ہے گھر میں، کوئی ایک شخص سیکھ لیتا ہے تو وہ پورے گھر والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسے ایک کو کپڑے سینے آتے ہیں، سب گھر والوں کے کپڑے سی دیتا ہے یا کھانا بنا دیتا ہے، لیکن تربیت ایسا نہیں ہے۔ اس میں دونوں کے لیے ضروری ہے، हम नहीं कहते कि बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन बिलाखिर इब्तदाई चीज़ें जो बहुत बुनियादी चीज़ें उससे आशनाई दोनों के लिए ज़रूरी है। क्यों ऐसा कि होता है, क्योंकि दरअसल देखिए ना कि अगर ये औलाद अमानत इलाही है और ये एक इंसान है जिसको हमारे हाथ में दे दिया गया है और हम इसे जैसा दिल चाहे बना लें और मोड़ लें, तो इसमें हमें ये देखना होगा कि बच्चा जो होता है इंसान, बल्कि यूँ कहूँ कि जो इंसान है वो बचपने में उसकी और ख्वाहिशें होती हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है ऐसे ऐसे उसकी तबीयत, उसका मिजाज भी बदलता है। तो लिहाजा अगर हमारा बच्चा बचपन में माँ के साथ बहुत अटैच होता है, तो बड़े होने के बाद खुसूसन लड़के बाप किस को अपना आइडियल बनाते हैं। तो कुछ एक ऐसा वक्त आता है इंसान की ज़िंदगी में, बच्चों की ज़िंदगी में, कि जिसमें वो अपने बाप से ज़्यादा करीब होते हैं, तो लिहाजा उनके बाप को भी, और जब मैंने कहा कि जैसे कि लड़के अगर हों तो खुसूसी तौर पर, तो बाप को महारतें आनी चाहिए। एक तो ये वजह होती है, नंबर दो वजह ये होती है कि बाप भी सीखे, कि अगर बाप महारत नहीं सीखेगा तो जब माँ अपने बच्चों को अपने उस इल्म की बिना पर तरबियत कर रही होगी ना, तो माँ और बाप की राय में इख्तलाफात आएंगे, लड़ाई झगड़े आएंगे, जिसके बिना पर खुद ये तरबियत का फुकदान कहलाएगी। कि माँ बाप जब जिस घर में लड़ाई झगड़ों में मुब्तला रहें और एक दूसरे के हमेशा काट करते रहें, मुखालिफ रहें, उस घर में बच्चों की तरबियत मुमकिन नहीं, एक अच्छी शख्सियत नहीं बन सकती मुकम्मल। तीसरे नंबर पे ये होता है कि बच्चे दोहरी शख्सियत के मालिक हो जाते हैं, क्योंकि माँ कुछ कहती है और बाप कुछ कहता है। वो अगर माँ की बात नहीं मानते, बाप के पीछे चलते हैं तो माँ नाराज़ होती है, और अगर माँ के पीछे चलते हैं तो बाप गुस्से में आता है कि जब मैंने उनसे कहा है कि ऐसे करो या यहाँ चलो या यहाँ ना जाओ। तो उस सूरत में ना फकत ये कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होते हैं मियाँ बीवी के, बल्कि बच्चे भी दोहरी शख्सियत का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों सीखें, मगर चूँकि बच्चा एक ख़ास मुद्दत तक माँ से अटैच होता है, मैंने आपको पहले भी इस बात पर इशारा किया, और ख़ुदा ने माँ की जिम्मेदारी रखी है घर में रहकर बच्चों की निगहदाश्त करना, देखभाल करना, घर के अंदर के काम, तो जैसे खुद रसूल अल्लाह ने तकसीम करी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शादी के बाद उनके घर के कामों की तकसीम में, कि बीबी फातिमा के ज़िम्मे आए, तो इस लिहाज से औरत को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा महारतें हासिल करें।
तो आप हमें यहाँ ये बताइए कि वो कौन सी महारतें हैं जो एक माँ के लिए जानना बहुत ज़रूरी है।
देखिए, अगर हम महारतों की लिस्ट लेते हैं तो ये काफ़ी है और हमारे इस टाइम में मुकम्मल नहीं होगी, लेकिन हम उस महारत की तरफ आते हैं जो मैं समझती हूँ सबसे पहली महारत
जी,
है,
जो बहुत ही अहम पॉइंट है, वो आगे
इब्तिदा हम उससे करते हैं। तो वो ये है कि हम सबसे पहले एक माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चे की खसूसियात से आगाह हो।
अच्छा।
एक इंसान जो अल्लाह ने उसकी गोद में डाला है ना, इस इंसान का मिजाज, इसके अहदाफ, इसकी खसूसियात, तो इससे आशनाई बहुत ज़रूरी है।
अच्छा।
होता ये है हमारे यहाँ जो तरबियत का फुकदान नज़र आता है ख्वाहिश के बावजूद, और कोशिश भी करते हैं बाज़ पेरेंट्स तो, लेकिन रिज़ल्ट उस तरह नहीं आता, उसमें अक्सर देखने में ये आया है कि होता ये है कि हम तरबियत के जो उसूल हमारे जहन में होते हैं, हम उन उसूलों पर अमल करते हुए अपने बच्चों को तरबियत कर रहे होते हैं।
अच्छा।
हम एक ही एज के हम एक ही उसूल पर चल रहे होते हैं, जबकि बच्चा एज में फ़र्क करता है। यानी अगर मेरे घर में 5 साल का बच्चा है, जो उसूल उसके लिए है वो 10 साल के बच्चे के लिए भी है, वो जो 21 साल का मेरा बेटा है उसके लिए भी है
जी।
जबकि इन सब के लिए उसूल मुख्तलिफ हैं। हम जैसी तरबियत अपने लड़के की कर रहे होते हैं, ऐसे ही अपनी लड़की की भी कर रहे होते हैं, जबकि दोनों के मिजाज में, दोनों की जिस्मानी साख में, और दोनों के कल माशरे के अंदर जो किरदार वो अदा करेंगे, उसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो शनाख्त ज़रूरी है कि माँ ये समझे कि जो बच्चा उसकी गोद में आया है अमानत इलाहिया के तौर पर, ये मर्द है, कल का ये मर्द बनेगा या औरत बनेगी। ठीक है, अब ये किस सिन में है, इसकी क्या ज़रूरियात हैं,
इसके अंदर क्या खसूसियात। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही थी कि कोई ख़ास सिन में तरबियत शुरू हो कि क्या हाँ। इसका
नहीं
अहदीस के हवाले से या रिवायतों के
तरबियत, तो अगर आप इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की और कुरान और अहले बैत की सीरत में देखें उसको, तो वो तो ये कहते हैं कि जिस वक्त आप माँ का इंतखाब करते हैं, आप अपने बच्चे की तरबियत का आगाज़ कर चुके होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है माँ की गोद में उस बच्चे ने आना है। लेकिन जैसे ही बच्चे का नुतफ़ा पड़ता है और माँ खुदावंद आलम माँ के वजूद में बच्चे को करार देता है, गोया बच्चे की तरबियत का आगाज़ हो चुका होता है। फिर उससे ज़्यादा बढ़कर जब बच्चा माँ की गोद में आता है और विलादत होती है, तो बच्चे की तरबियत और मुख्तलिफ तरीक़ों से शुरू हो चुकी होती है। तो लिहाजा माँ अपने बच्चे की शनाख्त हासिल करें और समझे कि उसके अंदर आपने क्या चीज़ डालनी है। ठीक है, उसका मिजाज क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ऐसे। इसीलिए हम ये देखते हैं कि बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपने बच्चों को, जैसे इमाम हसन इमाम हुसैन के बारे में मिलता है, ये बाहर जाके भी खेलते हैं। जैसे हजरत हबीब जनाब इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त थे
जी,
ये गली में जाते थे, खेलते थे। या एक मरतबा रसूल बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर आए तो देखा बीबी फातिमा परेशान दरवाजे के पास खड़ी हैं। अंदर दाखिल हुए तो देखा बीबी वहाँ खड़ी हैं पर्दे के पीछे या दरवाजे के पीछे, तो पूछा कि क्या बात है। फरमाया हसन हुसैन गली में खेल रहे, यानी बाहर घर से गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए।
अच्छा।
तो फिर नबी ने फरमाया परेशान नहीं हो, मैं लेकर आता हूँ। तो रसूलल्लाह गए और लेकर आए। तो यानी बच्चों के मिजाज को देखते हुए लड़के, लेकिन कभी रिवायतों में कहीं भी तारीख में यह नहीं मिलता कि बीबी जैनब और उम्मे कुलसूम बाहर खेलने गई हैं, हालांकि वो भी इनकी औलाद है। तो हमें यह देखना होगा कि हमारे पास जो अल्लाह की अमानत है ना, ये किस खसूसियात की हामिल है। तो शनाख्त हासिल करने के बाद फिर हम उन उसूलों को उठाएंगे जो उसकी खसूसियात से हमांगी करती होंगी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत खूबसूरत हदीस है, इसको मद्देनज़र रखें हम। आप फरमाते हैं कि बच्चा 7 साल में जो है वो सरदार है आपका, ठीक है। अलवलदु सय्यदुन सबअ सिनीन, 7 साल में बच्चा सरदार है। फिर फरमाते हैं और अगले 7 साल में क्या है, फरमाते हैं अबदुन सबअ सिनीन, यानी उसके बाद के जो 7 साल होंगे वो आपका नौकर है, आपका बंदा है, ग़ुलाम है आपका। और फिर तीसरा जो 7 साल का दौर है वो फरमाती है उसकी वजारत का दौर है, वह वज़ीर उन सब आसनीन। यानी हम ये खसूसियात को मद्देनज़र रखें ना कि हर एक को एक ही लाठी से थोड़ी हाँका जा सकता है। लिहाजा 7 साल भी बच्चे को सैयद बताया गया, फिर उसके बाद वो ग़ुलाम है और फिर उसके बाद वो वज़ीर है। तो उसके साथ जो उसूल बनेंगे, उसके साथ जो तरीक़ाकार होगा, वो इस हदीस की रोशनी में होगा। ये उसूल है इस्लाम के।
अच्छा मोहतरमा तस्नीम जहरा, इस हदीस के हवाले से आप मज़ीद कुछ बताइए, मज़ीद रोशनी डालिए इस पे, वजाहत कीजिए, क्योंकि ये हदीस कुछ वाज़ेह नहीं है हमारे यहाँ लोगों के ऊपर।
हाँ ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि बाज़ वक़्त हम रिवायत को अगर ना समझें तो बजाय इसके कि उससे हम अपनी मसले को हल करें, हम मज़ीद मसाइल में उलझ जाते हैं। लेकिन जिस तरह आयात के लिए होता है कि एक आयत को दूसरी आयत के साथ रखकर समझा जाए तो आसानी होती है, या बाज़ आयात का मफहूम वाज़ह नहीं होता जब तक कि हम उसको दूसरी आयात के साथ ना रखें, ऐसे ही रसूल की हदीस भी है। आप फरमाते हैं कि बच्चा शुरू के 7 साल में सैयद है, उसके बाद के 7 साल में ग़ुलाम है, नौकर है, और उसके बाद के 7 साल में वज़ीर है। लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की भी एक हदीस इसी से मिलती जुलती है। आप फरमाते हैं बच्चा शुरू के 7 साल में जो है उसकी तरबियत करो, उसके बाद के 7 साल में उसको अदब सिखाओ, और उसके बाद के 7 साल में उससे खिदमत लो। इमाम जाफर सादिक की भी एक हदीस हमें इसी मौजू पर मिलती है। आप फरमाते हैं कि बच्चे के शुरू के 7 साल खेल कूद करने दो उसको, खेल कूद में आज़ादी दो। फिर फरमाते हैं अगले 7 साल में उसको लिखना पढ़ना सिखाओ, और उसके बाद फरमाते हैं कि उसके आखिरी 7 साल में उसको ज़िंदगी की महारतें दो। अब अगर हम इन तीनों अहदीस को साथ रखते हैं तो ऐसे नतीजा निकलता है कि बच्चे की, हमारे औलाद की जो ज़िंदगी है उसे हम 3 हिस्सों में तकसीम करें, 7 साल, फिर 8 से लेकर 14 साल, फिर 15 से लेकर 21 साल। तो शुरू के जो 7 साल हैं उसमें बच्चे को एक सरदारी चाहिए। सरदारी का मतलब क्या है, मतलब यही कि बच्चे का एहतराम हो, बच्चे की बात को सुना जाए, उसकी बात को अहमियत
दी जाए उसकी।
हाँ,
बात को जी।
अब हम बड़ों की बात, कोई मैं आपसे बात करूं तो आप बहुत तवज्जो से सुनेंगी
जी।
लेकिन अगर कोई बच्चा बात करो तो उसकी बात आराम से काट देते हैं, या उसको झड़क देते हैं कि चुप रहो, क्या जरूरत है तुम्हें बोलने की। उसकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो कोई चीज़ बता रहा होता है कोई यकीन नहीं करता, या उसको आते जाते थप्पड़ मार देते हैं, चीखने लगते हैं उस पर। क्या हम अपने घर के बुज़ुर्ग के साथ ऐसा रवैया करना पसंद फरमाएंगे? लिहाजा नबी की हदीस के मुताबिक और इन दोनों मासूमीन की हदीस के मुताबिक ऐसा है कि बच्चे को शुरू के 7 साल में एहतराम दें, मगर उसकी तरबियत भी करें। बाज़ लोग उसको ऐसा आज़ाद छोड़ देते हैं कि बच्चा जो करे, कहते हैं नहीं इसे कुछ मत करें, ये बादशाह है
जी।
वो फिर जो जब उसकी बेतरबियती का दौर गुजर जाता है ये 7 साल, अब अगर उसको तरबियत करेंगे तो उसको तो आदत ही नहीं है
जी, वो बादशाह बन ही गया,
बस अब वो बन गया, कुर्सी तो कोई नहीं छोड़ता, तो आपने तो उसे बादशाह पे बिठा दिया। लिहाजा तरबियत के पहले 7 साल एहतराम के साथ तरबियत है, और इमाम सादिक की रिवायत को साथ रखें तो खेल कूद के अंदर तरबियत है। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का तरीक़ाकार क्या है, यही है, बच्चों के साथ खेल खेल में बच्चों को अशार सुना रही हैं तो खेल रही हैं, और उसको तरबियत कर रही हैं, उस बच्चे के अंदर शख्सियत साजी कर रही हैं, बच्चे को टाइम दे रही हैं। और अगर दूसरे हम 7 साल में आते हैं तो फिर ऐसा ही है, नबी फरमाते हैं नौकर है, ग़ुलाम है, मतलब ग़ुलाम किसे कहते हैं, जो बिल्कुल आपके आगे मुती हो, जो आपके आगे बात ना करे, जो आपके हुक्म को ना टाले, जो अपनी ज़िम्मेदारी को बतौर आसन अंजाम देने की कोशिश करे ना। लिहाजा इमाम अली और इमाम सादिक की हदीस के मुताबिक अदब है इसके अंदर और लिखना पढ़ना है। तो जब हम उस बच्चे को अपना अब्द बना रहे हैं, मतलब यह है कि उसकी तालीम पर भी तवज्जो दें और उसके अंदर उसको अदब भी सिखाएं, ठीक है, मुअद्दब बनाएं। तालीम पे ज़रूरत लिखना पढ़ना है, यानी पहली हमारी एजुकेशन में जो हमारे बच्चों की बुनियाद होनी चाहिए वो उनकी लैंग्वेज होनी चाहिए। हम अपने बच्चों की लैंग्वेज पे काम करें, जब उनको ज़बान आ जाएगी तो फिर वो उलूम आसानी से सीख सकेंगे। और उसके बाद बस मुख्तसर करूँगी टाइम, मुझे मालूम है कि टाइम बहुत कम है, कि आखिरी जो साल है वो रसूल ने फरमाया वजारत है, और इमाम अली इमाम सादिक कहते हैं खिदमत और ज़िंदगी की महारतें, यानी हम उससे मशवरा लें और उसके बाद उसको मैदान दें। जब तक वो तजुर्बा नहीं करेगा, वो जो कुछ उसने सीखा है ना बीच के 7 सालों में, जब वो अब्द था, जब उसको अदब सिखा रहे थे और लिखना पढ़ना, तो वो अपनी उन सीखी हुई चीज़ों को अमली तौर पर अंजाम नहीं देगा तब तक वो उनको अच्छी तरह समझ नहीं सकेगा। तो उसको मैदान दें, ज़रूरी नहीं कि उससे मशवरा लें तो उस पर अमल भी ज़रूर हो, मतलब ये कि अपने कामों में उसको शरीक करार दें, उस पर एतमाद करें और उस पर ज़िम्मेदारियाँ डालें, ताकि इमाम सादिक के बकौल वो इस दौर में अपनी ज़िंदगी की महारतें सीख सके। अब ये लड़के और लड़की के हिसाब से मुख्तलिफ है, जिसकी एक तफसील है इंशाल्लाह वो फिर कभी सही, कि अगर लड़की है तो शुरू के 7 साल में जब हम उसको अपना सरदार बना रहे हैं, या बाद के 7 साल में वो हमारी एक कनीज़ बन रही है, तो उसमें किन बातों का ख्याल रखा जाए, और लड़का है तो फिर किन बातों का ख्याल रखा जाए।
बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे अंदाज में इस हदीस को हमारे नाज़रीन पे और ख़ुद मुझ पर भी वाज़े किया, कि मेरे ऊपर भी ये हदीस बहुत ज़्यादा वाज़े नहीं थी। बहुत आपका शुक्रिया मोहतरमा तस्नीम ज़हरा। अज़ीज़ नाज़रीन, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इल्मी, अमली, अख़लाक़ी और तरबियती हवाले से तमाम दुनिया की ख़वातीन के लिए उस्वे नमूना है। इंशाअल्लाह के हम सब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को संवार सकें और उस पर अमल करने के लायक बन सकें। इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।
یکی از ریشه های تربیتی روانی و فرهنگی عدم رشد جامعه مادرهای مهربان و دلسوز هستند، همونا مادرهای خوب دلسوز بچه‌شه، درباره بچه‌ش به کم قانعه، الحمدلله الحمدلله بچه‌م نمازشو میخونه، بچه‌م دینشو داره، الحمدلله، اینقدر میگه الحمدلله که یعنی تلقی اینجوری میشه، بچهش میگه من یه وقت بهتر نشم، دو نمرم 20-21 که نمیشه گرفت. اگر مادری بتونه بچهش رو برای استغفار بفرسته، وای میشه؟ شما مادر تو خونه بچهش رو نفرسته، به شوهرش بگه بریم بریم که مدتی از جامون تکون نخوردیم، هلاک میشیم، بریم دعا، بریم داریم نابود میشیم. چی نابود میشی؟ میگه عرق شراب خوردی. میگه تکون نخوردیم از جامون. خانوما اینو بگن همه چی درست میشه، کار تربیتی از خانوماست.